सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे मैं हाजिर हूं इस पॉडकास्ट में। संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। एशिया कप में घनघोर निराशा के बाद भारत अब T20 वर्ल्ड कप की अंतिम तैयारी में जुटा है। इसी सिलसिले में टीम इंडिया को अपने ही मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ खेलना है। मंगलवार को ही मोहाली में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेलेगी। एशिया कप में निराश करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया या कोई भी और दल विश्व कप में भारत को हल्के में नहीं ले सकता। हालांकि विश्व कप में दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप में हैं, फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें किस तरह की रणनीति अपनाती हैं। दोनों ने अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीमें घोषित कर दी हैं और संयोग से भारत में खेलने वाली दोनों टीमें हल्के परिवर्तनों के अलावा लगभग वही हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन मैचों में चोट से उबरने के बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, साथ ही हर्षल पटेल को भी जगह मिली है। बुमराह के नहीं होने से भारत के प्रदर्शन पर एशिया कप में काफी असर पड़ा था। वैसे क्रिकेट जैसे खेल में निश्चित होकर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर UAE में बुमराह होते तो भारत का प्रदर्शन बेहतर ही होता। अगर ऐसा है भी तो किसी एक खिलाड़ी पर इस कदर निर्भरता कोई बेहतर संकेत नहीं है। आयरलैंड और इंग्लैंड की 2 सीरीज छोड़कर भारत ने पिछली 5 सीरीज घर में खेली हैं और इन सभी पर कब्जा भी किया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से 2-2 की बराबरी रही, फिर भी भारत को उसके घर में हरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। ऐसे में विश्व कप से पहले भारत के नाम 2 और सीरीज जा सकती हैं। लेकिन सवाल यही है कि विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में है, जहां के हालात बिल्कुल अलग हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी T20 दौरा 3-4 महीने पहले श्रीलंका में किया था, जिसे उसने 2-1 से जीता। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अपने देश में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज एक तरफा अंदाज में जीतकर भारत आ रहा है। इस लिहाज से कंगारू फॉर्म में है तो भारत को इसकी तलाश है। भारत पिछली 7 सीरीज से अजेय है। इस बार दिलचस्पी इस बात में भी होगी कि विराट कोहली एशिया कप वाले फॉर्म को इस सीरीज में भी बनाए रख पाते हैं या नहीं। T20 वर्ल्ड कप में टीम के लिए उनका लय में बने रहना जरूरी है। कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी ये सीरीज लिटमस टेस्ट है। कप्तान तो वो आगे भी बने रहेंगे, पर सवाल है कि अपने नेतृत्व को वो किस तरह और कितना असरदार बना पाते हैं। एशिया कप में अपने फॉर्म को लेकर वो खुद तो परेशान थे ही, गेंदबाजों के इस्तेमाल और फील्ड प्लेसिंग्स को लेकर भी आलोचना के दायरे में हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए कुल 23 T20 मैचेस में भारत ने 13 जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 9 में जीत मिली है। जून के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ये पहली T20 सीरीज होगी। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 2020 में T20 सीरीज भारत में खेली गई थी, जिसे भारत ने 2-1 से जीता था। भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार फिर रोहित, लोकेश राहुल, विराट, सूर्यकुमार, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत पर होगा। हार्दिक पांड्या और अश्विन की बल्लेबाजी बोनस की तरह होगी। दूसरी ओर गेंदबाजी में एशिया कप की टीम से इस बार काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। बुमराह के अलावा अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, दीपक चहर और मोहम्मद शमी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे। मोहम्मद शमी विश्व कप की टीम में रिजर्व के तौर पर शामिल हैं, लेकिन इस सीरीज में उनको मौका मिला है। सेलेक्टर्स ने अर्शदीप सिंह को आराम दिया है, हालांकि वो विश्व कप में खेलने जाएंगे। अर्शदीप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज में भी शामिल होंगे। उधर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में सीरीज खेलने के तुरंत बाद स्वदेश लौट जाएगी और T20 वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ भी T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। डेविड वार्नर भारत नहीं आ रहे हैं, वो आराम कर अगले महीने टीम के साथ जुड़ेंगे। फिर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास कप्तान एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड जैसे सॉलिड बल्लेबाज हैं। स्टीव स्मिथ इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले सप्ताह वनडे सीरीज में शतक और अर्धशतक जमा कर भारत को सचेत रहने के लिए कह दिया है। वैसे भी वो भारत के खिलाफ हमेशा से खतरनाक रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के 3 अन्य खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, मिशेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस को भारत दौरे पर आने वाली टीम से 2 दिन पहले चोट के कारण हटना पड़ा है। उनकी जगह नेथन एलिस, डेनियस सेम्स और सीन अबॉट को टीम में जगह मिली है। एशिया कप में बीसीसीआई ने भारत के खराब प्रदर्शन को लेकर जो समीक्षा की उसके मुताबिक मध्य के ओवर्स में भारतीय बैटिंग चिंता का विषय है। इसमें माना गया है कि 7 से 15 ओवर के बीच कम रन बने और विकेट ज्यादा गिरे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पर इन बातों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से संविधान संशोधन के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसे कोर्ट ने मान लिया है। इसका मतलब है कि अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर आगे भी बने रह सकते हैं। इस साल इंग्लैंड में काउंटी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हरियाणा के ऑफ स्पिनर जयंत यादव भी वार्विकशायर के लिए खेल रहे हैं। इस तरह अब तक 8 भारतीय खिलाड़ी काउंटी टीमों की सेवा दे चुके हैं। वार्विकशायर के लिए जयंत के अलावा मोहम्मद सिराज भी खेल रहे हैं, जिन्होंने अपने पदार्पण मैच में समरसेट के खिलाफ पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। इसके अलावा पहले मैच में शतक से वंचित रहने वाले शुभमन गिल अपने दूसरे मैच में मिडिलसेक्स के खिलाफ निराश कर गए। ग्लैमोर्गन की ओर से खेलते हुए उन्होंने 22 और 11 रन बनाए। लॉर्ड्स में यह मैच गिल की टीम 10 विकेट से हार गई। इंग्लैंड में भारतीय महिला टीम ने कल ही 3 मैचों की T20 सीरीज खत्म की है। अब यह टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज 18 सितंबर से शुरू करेगी। पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया तो दूसरे में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी। पहले मैच में सारा ग्लेन ने 4 विकेट लेकर और सोफिया डंकले ने अर्धशतक जमाकर मेजबान टीम को बढ़त दिलाई दी थी, लेकिन दूसरे मैच में पासा पलट गया। भारत की ओर से स्नेह राणा ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। स्मृति मानधना के नाबाद 79 रन की बदौलत भारत ने 143 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन कल ब्रिस्टल में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज भी अपने नाम कर ली। और अंत में भारत में हो रहे घरेलू क्रिकेट पर एक नजर। न्यूजीलैंड ए और भारत ए टीमों के बीच 3 अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंतिम मुकाबले का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन बेंगलुरु में भारत ए की टीम पहली पारी में 293 रन पर सिमट गई। ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 और विकेटकीपर उपेंद्र यादव ने 76 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड ए के मैथ्यू फिशर ने 4 विकेट लिए। इससे पहले सीरीज के दोनों मैच ड्रॉ पर खत्म हुए थे। उधर दलीप ट्रॉफी के दोनों क्वार्टर फाइनल मैच पूरे होने के बाद अब सेमीफाइनल्स कोयम्बटूर और सेलम में खेले जा रहे हैं। आज इन मैचों का दूसरा दिन है। कल पहले दिन कोयम्बटूर में सेंट्रल जोन के खिलाफ वेस्ट जोन ने 9 विकेट पर 252 रन बनाए थे। वेस्ट जोन के पृथ्वी शॉ 60 रन पर आउट हुए, जबकि राहुल त्रिपाठी 64 रन पर नाबाद थे। सेलम में चल रहे एक अन्य मैच के पहले दिन साउथ जोन ने नॉर्थ जोन के खिलाफ 2 विकेट पर 324 रन का स्कोर खड़ा किया। इसमें रोहन कुन्नुमल ने 143 और कप्तान हनुमा विहारी ने नाबाद 107 रन की शतकीय पारियां खेली। मयंक अग्रवाल 49 रन बनाकर आउट हुए। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित पॉडकास्ट सुनो दिल से। संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।